नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरकेपुरम में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कहा, दिल्ली के हर क्षेत्र का संतुलित विकास सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम के फेज 4 की शेष 3 कॉरिडोर के लिए फंड जारी किए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ग्रैप का चौथा चरण लागू किया गया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय निवेश ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया और 53वें विश्व पुस्तक मेले का आज हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन विकास परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं नए निर्माण कार्य, जर्जर चौपालों का जीर्णोद्वार, कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण, पार्कों का सौंदर्यकरण, ओपन जिम उपकरणों की स्थापना तथा आवश्यक स्थानों पर चार दीवारी का निर्माण किया जाएगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य सुनिश्चित करने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। इसका उद्देश्य गरीब, मध्यम वर्गीय और सभी वर्गों के समान रूप से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के हर क्षेत्र का संतुलित विकास दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है।
आज यहाँ 100 करोड़ के कामों का कार्यक्रम रखा है। मैंने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को ये कहा कि आप काम करने की ताकत रखिए, आपको फंड की कमी नहीं होने दूंगी मैं। इस दिल्ली पे हम सबका बराबर का अधिकार है और इसीलिए एक एक दिन हमने दिल्ली की जनता के लिए नई योजनाएं, नए काम, विकास कार्यों को गति देने की दिशा में लगाया।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम के फेज 4 के शेष 3 कॉरिडोर के लिए फंड जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 14,630 करोड़ रुपए आएगी, जिसमें दिल्ली सरकार लगभग 3,386 करोड़ रुपए वहन करेगी। कार्यालय ने बताया कि 3 कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 47 किलोमीटर होगी। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पहला कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक, दूसरा कॉरिडोर इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक और तीसरा और सबसे लंबा कॉरिडोर रिठाला से कुंडली तक प्रस्तावित है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पार्क स्ट्रीट इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब स्टेशन के स्थानांतरण और पुनर्निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। मेट्रो ने बताया कि इस पुनर्निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से मेट्रो के प्रमुख कॉरिडोरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा राजधानी में प्रस्तावित आगामी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को भी आवश्यक सहयोग मिलेगा। डीएमआरसी ने कहा कि इस कार्य में इंद्रप्रस्थ से आरके आश्रम मार्ग तक प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा मेट्रो लाइन की विद्युत आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। ये कार्य भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत संपन्न किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 53वां विश्व पुस्तक मेले का आज समापन हो गया। 9 दिनों तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले ने भारत और विश्व भर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और संस्कृति से जुड़े लोगों को एक मंच प्रदान किया। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष आयोजित विश्व पुस्तक मेला केवल पुस्तकों का उत्सव नहीं बल्कि ज्ञान, विचार और संस्कृति के संवाद का एक जीवंत मंच बनकर उभरा। 35 से अधिक देशों से आए 1,000 से ज्यादा प्रकाशकों की सहभागिता ने इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया, जहां साहित्य ने सीमाओं को लांघते हुए पाठकों से सीधा संवाद स्थापित किया। मेले में पुस्तक विमोचन, साहित्यिक संवाद, कविता पाठ, शैक्षणिक चर्चाएं और समकालीन विषयों पर केंद्रित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष मेले का प्रमुख आकर्षण भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और बुद्धिमता एट 75 विषय पर आधारित विशेष प्रदर्शनी रही। इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के गौरवशाली योगदान को दर्शाने वाली 500 से अधिक पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया, जिसने पाठकों को देश की सैन्य परंपरा और बलिदानों से रूबरू कराया। पुस्तक मेले में प्रवेश को पूरी तरह निःशुल्क रखे जाने का निर्णय भी अत्यंत सराहनीय रहा। मेले में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के माध्यम से पाठकों को 6000 से अधिक निःशुल्क ई पुस्तकों की डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई गई। कुल मिलाकर इस वर्ष का विश्व पुस्तक मेला न केवल पुस्तकों का उत्सव रहा, बल्कि वैश्विक साहित्यिक और सांस्कृतिक साझेदारी को सशक्त करने वाला एक प्रभावशाली मंच बनकर सामने आया। सकलेन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथियों को भेजे गए विशेष रूप से तैयार किए गए एट होम निमंत्रण पत्र की झलक साझा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने बताया कि इस वर्ष के निमंत्रण पत्र में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवंत परंपराओं को दर्शाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये निमंत्रण पत्र अष्टलक्ष्मी राज्यों के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित हैं। गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने 19, 20 और 21 जनवरी के लिए यातायात दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार परेड टुकड़ियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुबह 10:15 से दोपहर 12:30 तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ये प्रतिबंध कर्तव्य पथ से जुड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर लागू होगा, जिनमें रफी मार्ग, जनपद, मानसिंह रोड और सी हेक्सागन के चौराहे शामिल हैं। यातायात प्रतिबंध की अवधि के दौरान यात्रियों को इन क्षेत्रों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि देरी और मार्ग परिवर्तन की आशंका है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी अनुशासन, साहस और कर्तव्य परायणता की शिक्षा देती है। केंद्रीय मंत्री ने यह बात नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश का सौभाग्य है कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री एनसीसी के कैडेट रहे हैं। श्री सेठ ने प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों को बचाने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
जब पंजाब के अंदर बाढ़ पीड़ितों के बीच में गया और एनसीसी कैडेट की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था, यह गौरव का क्षण था मेरे लिए। जब बाढ़ में घिरे हुए लोग भारतीय सेना और एनसीसी कैडेट की तारीफ कर रहे थे, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इंडिगो पर 22,20,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानों के समय में देरी करने और उन्हें रद्द करने के मामलों में लगाया गया है। नागरिक उड्डयन के कई नियमों के उल्लंघन के लिए 1,80,00,000 रुपए का एकमुश्त प्रणालीगत जुर्माना और पिछले वर्ष 5 दिसंबर से आगामी 10 फरवरी तक 68 दिनों के लिए 30,00,000 रुपए का दैनिक जुर्माना शामिल है, जो कुल मिलाकर 20,40,00,000 रुपए का जुर्माना बनता है। राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी आज से शुरू। ये प्रदर्शनी कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कारीगरों, शिल्पकारों और अन्य प्रदर्शकों से संवाद भी किया। श्री मांझी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से विकसित भारत का सपना पूरा कर सकेंगे।
पीएम विश्वकर्मा हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन का योजना है। इसी के माध्यम से हम भारत में जो बेरोजगारी की समस्याएं है उसको दूर कर सकेंगे। इसी के माध्यम से हम जो आज बढ़ता प्रदूषण है उसको दूर करेंगे। इसी के माध्यम से हम अपना पुराना ग्लोरी, जो सोने का चिड़िया भारत कहलाता था, उसको प्राप्त कर सकेंगे और 2047 का सिद्ध भारत का सपना पूरा कर सकेंगे।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संयुक्त रूप से इस माह की 24 तारीख को नई दिल्ली में दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि शिखर सम्मेलन का विषय सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व होगा।
मंत्रालय ने बताया है कि इस विषय का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने में बौद्ध दर्शन की प्रासंगिकता को बढ़ाना है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि दो दिन के इस कार्यक्रम में विश्व भर से लगभग 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें सर्वोच्च धर्म गुरु, राष्ट्रीय बौद्ध संघों के प्रमुख, प्रख्यात भिक्षु, विद्वान और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। सम्मेलन में इस बात पर चिंतन होगा कि बुद्ध धर्म के मूलभूत मूल्य तकनीकी प्रगति के युग में नैतिक नेतृत्व, सामाजिक सद्भाव और सतत जीवन को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं वैष्णवी।
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने आज एक अंतर्राज्यीय निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मीडिया से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों से संपर्क कर उन्हें फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाते थे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। श्री पोसवाल ने बताया कि इस गिरोह में शामिल आरोपियों को तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाना टीम ने एक इंटरस्टेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट को बस्ट किया है। पूरे गैंग का जो मोडस ऑपरेंडी था, उसमें वो फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर लोगों से इन्वेस्ट कराते थे व्हाट्सएप नंबर से कॉल करा के। टोटल जो ट्रांजेक्शन इस पूरे प्रकरण में हुई थी वो 4 करोड़ रूपये की हुई थी 14 दिन के अंदर। और जितने भी बैंक अकाउंट इसके अंदर मिले उसमें 63 एनसीआरपी की कंप्लेंट्स ऑल ओवर कंट्री से लिंक मिली है।
एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी मूल रूप से नाइजीरिया के नागरिक हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लाल किले के पीछे मांगी पुल की मरम्मत और रंगाई के कार्य के कारण आज से बुधवार तक इस पुल का एक हिस्सा प्रतिदिन वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। इस इलाके में भारी जाम की संभावना को ध्यान में रखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा शांतिवन चौक, आउटर रिंग रोड पर गीता कॉलोनी की ओर जाने वाले लूप और अन्य मार्गों पर आवश्यकता पड़ने पर मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले जारी यातायात निर्देशों का पालन करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप का 4th चरण लागू कर दिया है। ये निर्णय दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के कल 400 तक पहुंचने के बाद लिया गया। इन प्रतिबंधों के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं को ढोने वाले वाहनों को छोड़कर BS4 ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही, वहीं दिन के समय धूप खिली रही। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 429 दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरकेपुरम में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कहा, दिल्ली के हर क्षेत्र का संतुलित विकास सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम के फेज 4 के शेष 3 कॉरिडोर के लिए फंड जारी किए। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय निवेश ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।